सिद्धये ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् निट्टवियट्ठकम्मम् वीरम्णमियूणपत्तसौवट्टम् अणुभागस्स विहत्तिम् जहो वै संपरुवेमो।
यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधौला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यति वृषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। पांचवी पुस्तक, ये जो अनुभाग विभक्ति नाम का अर्थाधिकार चल रहा है, उसमें हम पृष्ठ संख्या 53 पर आ गए। 53 आज से नया अनुयोग द्वार चालू हो जाएगा, उसका नाम है नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय। वो हाँ, ये इसका नंबर 15 है क्या, जो हमने पृष्ठ संख्या 3 पर शुरू की थी। देखो, हमने वहां सभी अनुयोगों के नाम देखे थे 3 नंबर के पृष्ठ पर, और उसमें से अभी ये 15 नंबर का चलेगा। नंबर का अनुयोग द्वार बढ़ते हैं। नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय दो प्रकार का है, वो दाह हुआ उसको दो करना। हाँ ठीक है, जगन्य और उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का प्रकरण है।
ये क्या सम्यक्त्व में जो प्रथम उपशम सम्यक्त्व है, उपशम सम्यक्त्व है और वेदक सम्यक्त्व है, वहाँ पे अनुभाग की अपेक्षा दोनों में समान होता है?
नहीं, वेदक सम्यक्त्व में और उपशम सम्यक्त्व में अनुभाग की समानता नहीं है, क्योंकि वेदक सम्यक्त्व को अनुभाग कांडक घात किए बिना भी प्राप्त कर सकता है। हमने देखा था ना, जैसे स्थिति कांडक घात किए बिना वेदक सम्यक्त्व होता है, परंतु उपशम सम्यक्त्व में तो अनुभाग कांडक घात होगे ही होगे। इसीलिए तो हमने देखा था वेदक सम्यक्त्व में अधिक से अधिक अनुभाग किसके होता है, तो अधिक अधिक अनुभाग के साथ जिसने वेदक सम्यक्त्व प्राप्त किया है। अभी हम नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय देख रहे हैं। अभी तक हम एक जीव की अपेक्षा हमने देखा था उसका स्वामित्व काल अंतर, अभी अनेक जीवों की अपेक्षा बात चलेगी। तो उसमें दो प्रकार से बताएंगे, जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का प्रकरण है, निर्देश दो प्रकार का है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओघ की अपेक्षा अभी उत्कृष्ट अनुभाग वाले जीव हमेशा ही होगे क्या नहीं होगे ये बताएंगे। कदाचित सब जीव मोनीय कर्म की उत्कृष्ट अनुभाग अविभक्ति वाले हैं। विभक्ति वाले नहीं कहा, अविभक्ति वाले का अर्थ एक भी जीव उत्कृष्ट विभक्ति वाला नहीं है, चारों ही गति में। समझ में आया इसका अर्थ, यानी उत्कृष्ट अनुभाग का बंद कोई नहीं कर रहा है, ऐसा कभी हो सकता है तो उसको कहते हैं एक भी जीव नहीं, यानी कदाचित सभी जीव उत्कृष्ट अनुभाग के अविभक्ति वाले हैं, यानी उत्कृष्ट अनुभाग किसी के भी नहीं पाया जाता, ऐसा भी हो सकता है। सत्ता तो सत्ता में तभी आएगा जब बनता है, बंद के समय ही होते हैं, बाद में भी वो सत्ता रहती है। हाँ, वो बाद में भी अंतर्मूर्त तक वो सत्ता रहती है, यानी उतना अनुभाग तो अंतर्मूर्त तक चलता है, तो ऐसा कभी हो सकता है कि एक भी जीव के पास वो सत्ता में ही नहीं है उत्कृष्ट अनुभाग।
अब ये एक तो तभी तक बनी रहेगी ना जब तक कोई क्रिया नहीं होती है।
नहीं, ये उत्कृष्ट अनुभाग तो एक अंतर्मूर्त में घटता ही है, उसके लिए कोई क्रिया की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उत्कृष्ट अनुभाग का बंध तो मिथ्या दृष्टि करता है और अंतर्मूर्त के बाद नियम से अनुत्कृष्ट होता है। ये एक विकल्प हुआ, एक भंग हुआ। कदाचित अनेक जीव अविभक्ति वाले उत्कृष्ट के ही बात लेना अभी, और एक जीव विभक्ति वाला होता है, और तीसरा भंग कदाचित अनेक जीव अविभक्ति वाले और अनेक जीव विभक्ति वाले होते हैं। अनेक में दो हो गए, दस हो गए, पच्चीस हो गए, जो कोई हो गए, तो अनेक अविभक्ति वाले और अनेक विभक्ति वाले, ये तीन भंग। पहले में सभी अविभक्ति वाले लिए, उत्कृष्ट का अविभक्ति वाले, दूसरे में एक विभक्ति वाला और अनेक बाकी सभी जो है वो अविभक्ति वाले, और तीसरे में अनेक विभक्ति वाले और अनेक अविभक्ति वाले। हाँ, विभक्ति और अविभक्ति का अर्थ क्या होता है? विभक्ति यानी भेद। कौन कौन से भेद देख रहे हैं? उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट, यानी उत्कृष्ट अनुभाग युक्त कोई जीव है और कोई उत्कृष्ट अनुभाग वाला एक भी जीव नहीं है, ऐसा भी कभी हो सकता है। इसके कहते अनेक जीवों की अपेक्षा ये भंग चल रहे हैं। एक जीव कब करता है उत्कृष्ट? जब बनता है तो अंतर्मूर्त तक उत्कृष्ट रहता है। अब ऐसी भी पोजीशन आएगी चारों गति में किसी ने भी उत्कृष्ट का बंध किया ही नहीं है और वो उत्कृष्ट के सत्ता वाला भी नहीं है। ये सत्ता की अपेक्षा सारी बातें चलती हैं। तो जब उत्कृष्ट वाला भेद है तो उसको कहेंगे उत्कृष्ट विभक्ति वाला है, अनुभाग की चर्चा चल रही है। और अनुत्कृष्ट, जो उत्कृष्ट नहीं वो सारे ही अनुत्कृष्ट है, तो अनुत्कृष्ट वाले तो हमेशा ही रहेंगे, यानी हमेशा ही सभी जीव अनुत्कृष्ट वाले हो गए। कभी ऐसा होगा कि एक जीव उत्कृष्ट वाला है बाकी सभी अनुत्कृष्ट वाले हैं, और कभी कभी अनेक जीव उत्कृष्ट वाले और अनेक जीव अनुत्कृष्ट वाले। जैसे उत्कृष्ट की अपेक्षा कथन किया तीन भंग, वैसे ही अनुत्कृष्ट की ओर से कथन करेंगे वो उसके भी तीन भंग हो गए। किंतु हाँ, जब उत्कृष्ट का बंध होता है तो अंतर्मूर्त तक उत्कृष्ट ही रहता है, बाद में वो नियम से अनुत्कृष्ट हो जाता है। परंतु सत्ता में भी किसी के उत्कृष्ट अनुभाग नहीं है, ऐसा हो सकता है। इसलिए कहा कदाचित, अभी हमें उत्कृष्ट की बात कर रहे हैं ना, तो उत्कृष्ट को पहले रखना। कदाचित उत्कृष्ट वाले अविभक्ति वाले हो गए सभी जीव, फिर कदाचित एक है वो अविभक्ति वाला, और कदाचित अनेक है। अब अनुत्कृष्ट की ओर कथन करना है तो अनुत्कृष्ट का पहले रखेंगे। तो यहां लिखा है ना, इतनी विशेषता है कि विभक्ति को पहले रखकर कथन करना चाहिए, अर्थात कदाचित सब जीव मोहिनी की अनुत्कृष्ट विभक्ति वाले हैं। वहां उत्कृष्ट की ओर से कथन करना था तभी कहा था उत्कृष्ट के अविभक्ति वाले हैं, उसी का अर्थ होता है अनुत्कृष्ट के विभक्ति वाले हैं। फिर भी कथन इसकी ओर से करना है, इसलिए अनुत्कृष्ट नाम रखकर फिर जो उसमें एप्लीकेबल है वो बताते हैं। कदाचित अनेक जीव अनुत्कृष्ट विभक्ति वाले और एक जीव अविभक्ति वाला है। किसका? अनुत्कृष्ट का अविभक्ति वाला। कदाचित अनेक जीव अनुत्कृष्ट विभक्ति वाले और अनेक जीव अविभक्ति वाले हैं। इसी प्रकार अब ये जो कथन घटित किया है ऐसा ही कथन कौन कौन सी मार्गणा में होगा वो बता रहे हैं। इसी प्रकार हाँ, विभक्ति वाले ने वो सत्ता वाले, उत्कृष्ट की सत्ता वाला एक भी जीव न हो ऐसा बन सकता है, तो हम क्या कहेंगे? वो है ही नहीं किसी के पास, हम कहेंगे सभी जीव उत्कृष्ट की अविभक्ति वाले, जो पहली लाइन में बताया था अविभक्ति वाले, सभी जीव उत्कृष्ट की अविभक्ति वाले। इसका अर्थ एक भी जीव के पास उत्कृष्ट अनुभाग है ही नहीं है। हाँ। और अनुत्कृष्ट की ओर से कथन करना है तो वाक्य में अनुत्कृष्ट शब्द रखो, तो क्या कहेंगे? कदाचित सब जीव अनुत्कृष्ट की विभक्ति वाले हैं, अविभक्ति वाले कभी नहीं होंगे। अनुत्कृष्ट की विभक्ति वाले तो हमेशा ही रहेंगे ही, अब उसके साथ विभक्ति वाले लिए ना, तो अविभक्ति वाले कभी कभी एक होगा और कभी कभी अनेक होगे। उत्कृष्ट की तरफ से कथन किया, अनुत्कृष्ट की तरफ से कथन किया, दोनों ही होगा। हाँ स्थिति नहीं, अनुभव अनुभव अनुभव। हाँ देखो यहाँ मार्गणा की बात नहीं चल रही, ओग ने सभी जीवों को एक साथ लिए, ओग में ने सभी गुण सभी एक साथ, कहीं भी नहीं हो ऐसा हो सकता है क्या? जहां जहां मोनी की सत्ता है, जहां उत्कृष्ट नहीं वहां अनुत्कृष्ट तो है ही, मोनी की सत्ता वालों में इसको घटित करना है, तो मिथ्या दृष्टि में ही उत्कृष्ट अनुभाग पाया जाता है ना? और फिर ऐसा जीव जो है उत्कृष्ट वाला अनुभाग वाला जो है वो सम्यक दर्शन होगा वगैरह घटेगा, फिर जितना घटेगा तो भी उसको क्या कहेंगे? अनुत्कृष्ट कहेंगे। दसवें गुणस्थान के अंत में भी क्या कहेंगे उसको? अनुत्कृष्ट कहेंगे। अभी जघन्य अजघन्य का प्रकरण नहीं है, जो उत्कृष्ट टॉप मोस्ट नहीं है वो सारा ही अनुत्कृष्ट है। तो ऐसा हो सकता है एक भी जीव उत्कृष्ट वाला नहीं है तो उसको कहेंगे सभी जीव उत्कृष्ट के अविभक्ति वाले है।
उत्कृष्ट का अंतर भी हमने बहुत ज्यादा देखा था।
हाँ, वो तो नाना जी उनकी अपेक्षा वो आएगी भी। देखो उत्कृष्ट का अंतर कितना देखा था?
असंख्यात लोग,
असंख्यात पुद्गल परावर्तन
नहीं, असंख्यात एक जीव की अपेक्षा,
एक जीव की अपेक्षा कितना?
नाना जीव की अपेक्षा,
एक जीव की अपेक्षा नहीं याद
नहीं,
आप जो असंख्यात लोग आपको जघन्य का याद है, हम यहाँ उत्कृष्ट का देख रहे हैं। एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट कब किया थे उसने? संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त मिथ्या दृष्टि, फिर वो निगोध में चला गया, एक इंद्रिय में चला गया। एक इंद्रिय का लगातार काल कितना है? असंख्यात पुद्गल। बाद में जब जाके संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त हुआ, उसने उत्कृष्ट बंध किया, तो उसके उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति होगी। तो एक जीव की अपेक्षा ये इतना बीच में अंतर पड़ सकता है। आपको जो असंख्यात लोक याद है वो जघन्य के लिए याद है, वो भी एकेंद्री के योग्य जगह। हाँ। देखो ये हमने तीन और तीन छह भंग पढ़े, 53 पेज है। हाँ। हाँ? अनुत्कृष्ट के तीन पढ़ गए हमने,
पढ़ लिया ना,
फिर दोबारा पढ़ेंगे। देखो उत्कृष्ट की बात याद आई, ख्याल आई, उत्कृष्ट के तीन भंग, सभी जीव उत्कृष्ट के अविभक्ति वाले हैं, यानी किसी के पास उत्कृष्ट नहीं है। दूसरा भंग,
एक जीव
सभी अविभक्ति वाले हैं परंतु एक विभक्ति वाला है। फिर तीसरा पॉइंट, अन्य सभी तो यानी अनेक जो है वो अविभक्ति वाले हैं और अनेक विभक्ति वाले, ये उत्कृष्ट की ओर से तीन भंग। अब अनुत्कृष्ट को हम वाक्य में रखेंगे तो पहले पॉइंट पर क्या कहेंगे? कदाचित सभी जीव अनुत्कृष्ट की विभक्ति वाले हैं। दूसरे में एक जीव अनुत्कृष्ट की अविभक्ति वाला है,
सो वो उत्कृष्ट की विभक्ति वाला है।
अनुत्कृष्ट की ही कहना है यहाँ, तो अनुत्कृष्ट का ही नाम लेना, उसी का अर्थ होता है उत्कृष्ट की विभक्ति वाला है, उसी का अर्थ है अनुत्कृष्ट की अविभक्ति वाला है। और तीसरे पॉइंट पर, अनेक तो अविभक्ति सॉरी विभक्ति वाले है ही, अनेक अविभक्ति वाले भी है, ये अनुत्कृष्ट की तरफ से तीन भंग। और यहाँ लिखा है ना बीच में, किंतु इतनी विशेषता है कि विभक्ति को पहले रखकर कथन करना चाहिए। जब उत्कृष्ट को पहले रखा तो उसकी ओर से कथन किया, अनुत्कृष्ट को पहले रखेंगे तो उसकी ओर से कथन करेंगे, बात तो वही की वही है उनमें। अर्थात यहाँ फिर पढ़ती मैं ऊपर से छठी लाइन, कदाचित सब जीव मोहनी की अनुत्कृष्ट विभक्ति वाले हैं, इसी का अर्थ एक भी उत्कृष्ट की विभक्ति वाला नहीं है। ऊपर का जो पहला पॉइंट था वो ऐसा ही था कि सब उत्कृष्ट की अविभक्ति वाले हैं, उसी का अर्थ है सभी अनुत्कृष्ट की विभक्ति वाले हैं। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, कदाचित अनेक जीव अनुत्कृष्ट विभक्ति वाले और एक जीव अविभक्ति वाला है। ये कॉम्बिनेशन देखना है अनेक जीवों की बात, और कदाचित अनेक जीव अनुत्कृष्ट विभक्ति वाले और अनेक जीव अविभक्ति वाले हैं। इतनी बात ख्याल में आई? अब ऐसा ही और कहां कहां घटित होगा वो बता रहे। इसी प्रकार सब नारकी, सब तिर्यंच, सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य, मनुष्यनी, देव और भवनवासी से लेकर सहस्रार तक के देवों में जानना चाहिए, क्योंकि जो उत्कृष्ट जो है वो की अपेक्षा घटित करते हैं, वैसा ही उत्कृष्ट यहाँ ये बंद भी करेंगे और उनकी सत्ता भी पाई जाएगी, इसलिए इनमें तो ओग के जैसा ही घटित होगा। मनुष्य अपर्याप्तकों में उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वालों के 8 भंग होते हैं। ये 8 भंग क्यों होते हैं? वो सांतर मार्गणा है, यानी कभी कभी तो ऐसा होगा ना कोई उत्कृष्ट वाला होगा ना कोई अनुत्कृष्ट वाला होगा, क्योंकि मार्गणा ही नहीं ना, मनुष्य ही नहीं होगी वहां पर्याप्त में। और फिर उसमें अभी उत्कृष्ट को लेना है, उत्कृष्ट को एक रखो, उसके सामने अनुत्कृष्ट के अनेक रखेंगे, फिर उत्कृष्ट के अनेक, अनुत्कृष्ट के भी अनेक। ऐसा उल्टा नहीं होगा कि उत्कृष्ट के अनेक हो गया और अनुत्कृष्ट का एक ही होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। अभी उत्कृष्ट की तरफ से बात करी, फिर अनुत्कृष्ट की तरफ से करना 4, तो वहां 8 भंग हो जाएगा। आनंद स्वर्ग से लेकर सर्वार सिद्धि पर्यंत उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट विभक्ति वाले जीव नियम से होते हैं।
ये सांतर मार्गणा की अपेक्षा यहाँ पे एक जीव उत्कृष्ट विभक्ति वाला है, बाकी कोई जीव है ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है?
सांतर मार्गणा में हो सकता है कि एक ही जीव उत्कृष्ट वाला है, और सांतर मार्गणा में ऐसा भी हो सकता है एक ही जीव अनुत्कृष्ट वाला है,
वो दो
ये वो इसीलिए वहाँ हो सकते हैं। एक ही है अनुत्कृष्ट वाला,
कोई है ही नहीं,
हाँ बाकी कोई है ही नहीं है, या अनेक जीव है। देखो उसमें क्या हो सकता है, मात्र उत्कृष्ट वाला ही है, उसकी अपेक्षा उत्कृष्ट, लब्धि पर्याप्त की अपेक्षा उत्कृष्ट, क्योंकि पंचेंद्रिय उत्कृष्ट बांधकर उसमें आया है, तो एक जीव उसमें है उत्कृष्ट वाला। कभी कभी क्या होगा, अनेक जीव उत्कृष्ट वाले होंगे। तीसरा पॉइंट, एक उत्कृष्ट वाला और एक अनुत्कृष्ट वाला, फिर अनेक उत्कृष्ट वाले, अनेक अनुत्कृष्ट। वहां तो ऐसा हो सकता कि अनेक उत्कृष्ट वाले और एक ही अनुत्कृष्ट वाला है, वहां हो सकता है, क्योंकि वो सांतर मार्गणा है। इसलिए आनंद स्वर्ग से लेकर सर्वार सिद्धि पर्यंत उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट विभक्ति वाले जीव नियम से होते हैं। ये उनकी अपेक्षा उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट लेना, मार्गणा की अपेक्षा उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट। इंद्रिय की अपेक्षा सामान्य एक इंद्रिय,
यहाँ पे आनंद स्वर्ग में तो एक ही समय के लिए उत्कृष्ट वाला होता है।
आनंद में कभी उत्कृष्ट होता है बोलो?
जो मिथ्या दृष्टि,
हाँ
द्रविलिंगी मिथ्या दृष्टि जो उत्पन्न होते हैं, उसकी अपेक्षा उसका उत्कृष्ट अनुभव हो जाएगा, बराबर?
हाँ, मगर वो एक ही समय क्यों करे?
अच्छा, वो कंटिन्यूस लाइफ टाइम करे?
नहीं, जब तक कोई क्रिया नहीं करेंगे, औपशमिक समय तो प्राप्त नहीं करेंगे, तो उत्कृष्ट रहेगा उनका।
हाँ, यही अपेक्षा मैंने पूछा था,
हाँ।
कि मिथ्या दृष्टि जीव उत्कृष्ट अनुभाग बंद किया तो उसका क्या, जब तक क्रिया नहीं होगी तभी तक उत्कृष्ट अनुभाग भी रहेगा?
नहीं, उसका नहीं रहेगा,
वो उत्कृष्ट वाला उत्कृष्ट नहीं रह सकता।
हाँ, उत्कृष्ट नहीं रह सकता, क्योंकि उत्कृष्ट है वो अनुत्कृष्ट हो जाता है अंतर्मूर्त में, और यहाँ बंद, यहाँ बंद नहीं हो रहा है उत्कृष्ट का।
अच्छा, यह अल्पतर हो रहा है।
हाँ। स्वामित्व निकालना है। देखो देखो कन्फ्यूजन हो रहा है ना। अनुभाग विभक्ति का स्वामित्व में हम देवों की बात देखेंगे। उत्कृष्ट की, क्योंकि जघन्य की तो हमने देखी थी, क्षायिक वगैरह होता है वो जिसके जघन्य होते हैं। ये तेरा तेरा से बाद, हाँ ये तेरा पृष्ठ पर है। आनंद स्वर्ग से लेकर 18 नंबर का पॉइंट, आनंद स्वर्ग से लेकर मिला ना नव ग्रहवेग तक के देवों में मोनी कर्म का उत्कृष्ट अनुभाग किसके होता है? जिसके आनतादि स्वर्ग के योग्य, मोनी कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग की सत्ता है उसके योग्य लिखा। ये तीव्र मिथ्या दृष्टि ज्यादा अनुभाग वाला उसको नहीं लेगा, वहां जाने योग्य जो उत्कृष्ट है। हाँ, अनुभाग की सत्ता है। ऐसा जो द्रव्यलिंगी मरकर अपने योग्य उक्त देवों में उत्पन्न होता है, वह जब तक उसका घात नहीं करता तब तक उसके उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति होती है। हाँ, उत्कृष्ट मिथ्या दृष्टि वो तो उन्होंने बता दिया, मिथ्या दृष्टि वहाँ गया है द्रव्यलिंग के साथ, वही तो बताया था मैंने।
लाइफ टाइम उसका उत्कृष्ट रह सकता है।
देखो अभी निकालो उसका एक जीव की अपेक्षा काल देखो, और काल में फिर मार्गणा निकालो वो आनंद की, उत्कृष्ट का काल। आदेश में 22 पृष्ठ पर देखो विशेषार्थ में क्या लिखते हैं, जिन पर्यायों में, हाँ देखो, आनंद स्वर्ग से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्त, क्यों अंतर्मूर्त में वो क्रिया करेंगे,
और उत्कृष्ट काल,
उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण, उसका अर्थ है उसका अनुभाग उतना ही रहेगा।
हाँ, तो 31 सागर तक वो उतनी ही
उतना ही स्थिति नहीं, अनुभाग अनुभाग उतना बने।
सो जब तक कोई क्रिया नहीं होती है,
क्रिया नहीं, उसने सम्यक तो प्राप्त नहीं किया है उसमें बीच में
31
आनंद से लेकर ग्रेवेक तक तो ये बात हो सकती है। हाँ, और यहाँ तो जो बात बता रहे सर्वार सिद्धि तक के जो लिए, उनके योगी जितने अनुभाग के साथ आया है अगर क्रिया नहीं करता है तो उतने अनुभाग लाइफ टाइम तक बना रहता है।
सो उत्कृष्ट अनुभाग के साथ जो सर्वार सिद्धि में उत्पन्न हुआ है उसका लाइफ टाइम पर्यंत
उत्कृष्ट ही रहेगा,
विसंयोजना नहीं करेगा तो।
हाँ, विसंयोजना नहीं करेगा। वेदक के सम्यक्तों के साथ आया हुआ हमने देखा था, उसके योग्य उत्कृष्ट कहना, इसीलिए हमने अंतर के प्रकरण में एक जीव की अपेक्षा अंतर में भी देखा था, उनका अंतर नहीं है देखा था, ना उत्कृष्ट का अंतर है ना जगन्य का अंतर।
यही अपेक्षा मैंने सम्यक्तों के बारे में कल में विषय परिचय पढ़ रहा था उसपे मेरे मैं ऐसा समझा कि जो सम्यक्त जीव है,
हाँ,
वेदक सम्यक्त और उपसम सम्यक्त,
हाँ,
अनुभाग की अपेक्षा उनकी समानता होती है।
क्यों? उपसम सम्यक्त प्राप्त किया है तो अनुभाग कंडक हुए है उसके, नहीं तो दोनों को समान कहते हैं। सम्यक दृष्टियों में उत्कृष्ट किसके होता है? वेदक सम्यक दृष्टि के होता है।
हाँ,
नहीं तो दोनों में कहते ना उपशम सम्यक में होता है करके, औपशमिक सम्यक दृष्टियों में किसके होता है उत्कृष्ट? जगन्य घात करके जो आया है, जगन्य घात करके आया है उसमें जगन्य किसके हो गया औपशमिक सम्यक में? तो फिर वो दो बार उपशम सम्यक उपशम श्रेणी चढ़ के आते
होता है, इसके भी दो कारण परिणाम होते हैं।
हाँ, होते ही है, ऐसा नहीं है, कभी कभी छोटे अंतर्मूर्त में,
पर कारण परिणाम तो हमने देखे थे, दो कारण परिणाम तो
दो कारण होते हैं।
हाँ,
परंतु एक छोटे अंतर्मूर्त में जा, परंतु उसका अनुभाग ज्यादा नहीं होगा, परंतु उसमें वो पूरा अनुभाग का कांडक का घात नहीं होगा। यानी उसके योग्य उत्कृष्ट कहा ना, वेदक सम्यक्त के योग्य उत्कृष्ट, ऐसा लेना वहां पर। जो मिथ्यात्व में उत्कृष्ट है, यहाँ जब मार्गणा देखते हैं, उस मार्गणा में कितना उत्कृष्ट है उसको देखना। पहले स्थिति भी उतनी की उतनी रखी थी। देखो अभी इंद्रिय मार्गणा में हम 53 पृष्ठ पर देख रहे हैं, 53 पेज। इंद्रिय की अपेक्षा सामान्य एक इंद्रिय और उनके बादर सूक्ष्म पर्याप्त और अपर्याप्त सब भेदों में तथा सब विकलेंद्रियों और सब पंचे इंद्रियों में, ऊपर नहीं दिख रहा है,
जो जीव सम्यक्त्व प्राप्त करता है
हाँ।
उसको मिथ्यात्व का अनुभव कम होता है और सम्यक्त्व का अनुभव बढ़ता है, ऐसे नहीं ना?
नहीं नहीं, सम्यक्त्व का अनुभव है ना, सम्यक्त्व का अनुभव क्या होता है,
अनुभव मंद हो जाएगा उसका,
अनुभव कर्म में होता है हाँ। तो सम्यक्त्व का है नहीं, क्या सम्यक प्रकृति का बताना चाहते हैं?
ये कुछ बहुत कंफ्यूजन चल रहा था कल,
क्योंकि वो स्थिति की हमने जितना पढ़ा था ना अभी,
प्रशस्त
वैसा ही वो तो बहुत, अभी आप थे भी नहीं ना बीच में, तो जितना अनुभाग उसने बांधा है तो कुछ परमाणुओं का कम होगा भी, तो भी ऐसे ही कर्म उतने ही अनुभाग के साथ कुछ परमाणु बने रहे।
यहाँ पे अनुभाग में कोई अप्रशस्त प्रशस्त होते नहीं है ना,
क्या अनुभाग तो अनुभाग होता है, प्रशस्त कर्मों का अनुभाग कहो या अप्रशस्त, अब मोहनीय तो अप्रशस्त ही है,
ऊपर के गुणस्थान में प्रशस्त अनुभाग बढ़ता जाता है और अप्रशस्त,
प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ता है, प्रशस्त अनुभाग नहीं बढ़ता।
तो सम्यक प्रकृति तो प्रशस्त
नहीं है, हमने क्या देखा, घाती कर्म की 47 प्रकृति सभी अप्रशस्त ही है, और हमने देखा था सम्यक प्रकृति का अनुभाग जैसा आगे बढ़ेंगे तो कम होता है कि बढ़ता है, जगन्य कब होता है, कृतकृत्य वेदक में, अगर वो प्रकृति शुभ होती तो उसका अनुभाग बढ़ना चाहिए था, ख्याल में आती है ना? ये तो महुने की सभी प्रकृतियां अप्रशस्त ही लगाओ उसके, भले वो सम्यक प्रकृति भी क्यों ना हो, ये सभी अप्रशस्त है, गाती की सभी अप्रशस्त है। वो कहते मीठी दवा कड़वी दवा दवा तो दवा ऐसा कहते हैं। पढ़े हम ही आगे
हाँ।
देखो फिर पढ़ते हैं आप, अभी इंद्रिय मार्गणा में बात चल रही है और बात उत्कृष्ट की चल रही है और नाना जीवों की अपेक्षा बात चल रही है। तो कहते सामान्य एक इंद्रिय उनके बादर सूक्ष्म पर्याप्त पर्याप्त, यानी एक इंद्रियों के सब भेद लिए तथा सब विकलेंद्रिय और सब पंचेंद्रियों में कदाचित सब जीव अनुत्कृष्ट विभक्ति वाले हैं, कदाचित अनेक जीव अनुत्कृष्ट विभक्ति वाले और एक जीव उत्कृष्ट विभक्ति वाला है, कदाचित अनेक जीव अनुत्कृष्ट विभक्ति वाले और अनेक जीव उत्कृष्ट विभक्ति वाले हैं। पहले में पहले सभी अनुत्कृष्ट वाले लिए है ना, फिर उत्कृष्ट वाला एक लिया, फिर उत्कृष्ट वाले अनेक लिए, तो इन पर्यायों में उत्कृष्ट कब होता है?
पंचेंद्रियों
में उत्कृष्ट का अनुभाग बांध कर जो इन पर्यायों में उत्पन्न हुआ है उसके उत्कृष्ट होगा। अभी हमने देखा कि चारों गतियों में उत्कृष्ट वाला कभी नहीं भी हो सकता, तो जब नहीं भी होगा तो एक इंद्रियों में कहां से आएगा, इसलिए यहां भी वो भंग हो सकते हैं, ख्याल में आई बात? अभी हमने ओघ में जब देखा था ऐसा हो सकता है ना, एक भी जीव उत्कृष्ट का नहीं, उत्कृष्ट वाला नहीं है, तो एक भी नहीं है तो मरकर एक इंद्रियों में जाने वालों के भी एक के भी उत्कृष्ट अनुभाग नहीं होगा, इसलिए वहां भी वो तीन भंग बढ़ते हैं। इसी प्रकार शहो का है, यानी पांच स्थावर का है और एक त्रस का है, उसमें भी ऐसी बात घटित होगी कि उत्कृष्ट वाला एक भी नहीं है, यानी वहां कहेंगे सभी अनुत्कृष्ट वाले हैं, कभी फिर कहेंगे सभी अनुत्कृष्ट वाले एक उत्कृष्ट वाला है, और कभी अनेक उत्कृष्ट वाले हैं। इसमें तो अनुत्कृष्ट और उत्कृष्ट ऐसे घटित किए, दोनों तीन और तीन घटित नहीं किए हैं, डायरेक्ट बता दिया। वहां अविभक्ति वाले और विभक्ति वालों की भाषा में बात कही थी। ऊपर जो बताए थे ना तीन भंग, वो तो कथन में दो भेद है, मगर बात तो वही की वही है, भंग तो वही है, उत्कृष्ट की ओर से बताएंगे अनुत्कृष्ट की ओर से बताएंगे। अब यहाँ तो अनुत्कृष्ट और उत्कृष्ट ऐसे विभक्ति वाले ही दोनों लिए, विभक्ति और अविभक्ति के कहरे पर अनुत्कृष्ट के तीन और उत्कृष्ट के तीन बताए थे। अब जब विभक्ति वाले दोनों लेना, उत्कृष्ट की विभक्ति वाले और अनुत्कृष्ट की विभक्ति वाले, ऊपर जो मार्गणाएं ली थी, तो अभी यहाँ इंद्रिय मार्गणा की बात है, वहां ओघ जैसा कथन और कहा, सभी मार्गणाएं हैं, परंतु वे ऐसी मार्गणाएं हैं, गति मार्गणा वहां ली, और अभी जो है वो इंद्रिय मार्गणा ले रहे हैं। सभी तीर्यंचों में तो एक इंद्रिय भी आ ही जाते हैं, फिर वे यहाँ इंद्रियों की अपेक्षा स्पेसिफिक उसमें क्या बन सकता है, सभी तीर्यंचों तो कह दिए, परंतु सभी तीर्यंचों में जो और भेद होते हैं उनमें क्या कोई अलग बात हो सकती है या नहीं, वो यहाँ बताएंगे। देखो इसी प्रकार हम इंद्रियों की अपेक्षा अभी पांचवी लाइन में आए हैं, इसी प्रकार छहो काय यानी काय मार्गणा की अपेक्षा भेद करेंगे, पृथ्वी काय, अपकाय, तेज काय, वायु काय और वनस्पति काय, तो और त्रस काय, तो उनमें भी यही कथन लागू होगा। पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, औदारिक काय योगी, औदारिक मिश्र काय योगी, यानी सबका अपना अपना उत्कृष्ट समझना वहां पर। वैकृत काय योगी, कार्मण काय योगी, तीनों वेद वाले, चार कषाय वाले, मति अज्ञानी, श्रुत अज्ञानी, विभंग ज्ञानी, आभिनिबोधि ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, इनमें भी उनका अपना उत्कृष्ट लेना। असंयत चक्षु दर्शन वाले, अचक्षु दर्शन वाले, अवधि दर्शन वाले, शुक्ल लेशा के सिवा शेष पांचों लेशा वाले, शुक्ल लेशा वाले को छोड़ दिया, भव्य अभव्य सम्यक दृष्टि, वेदक सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, संगी असंगी, कॉमा लगाना, आहारी और अनाहारी जीवों में जानना चाहिए। अब ये जो कोई सांतर मार्गणा है उनको यहाँ बताएंगे। देखो ये वैकृत मिश्र का योग को छोड़ा था बीच में, हाँ वो सांतर मार्गणाएं सभी छोड़ी थी, अब यहाँ पढ़ेंगे उसकी बात। वैकृत मिश्र का योगी, आहारक का योगी, आहारक मिश्र का योगी, देखो ये सारे सांतर मार्गणाएं ली, नाना जीवन की अपेक्षा बात चल रही है, कोई भी जीव वैकृत मिश्र का योग में न हो ऐसा बन सकता है। अपगत वेदी, क्योंकि अपगत वेदी तो श्रेणी में होते हैं, अकषायी ग्यारहवा गुणस्थान है, सूक्ष्म सांप्राय संयत यथाख्यात संयत, उपशम सम्यक दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टियों में अपर्याप्त मनुष्य के समान भंग है, यानी कितने है, आठ भंग है। कोई भी जीव नहीं होगा ना, फिर उत्कृष्ट के ही हो गए, एक होगा या अनेक होगे, या अनुत्कृष्ट ही हो गए, एक होगा या अनेक हो गए, या फिर दोनों के आपस में कॉम्बिनेशन लेना। फिर संयत, सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत, परिहार विशुद्धि संयत, संयता संयत, मनपरे ज्ञानी, शुक्ल लेशा वाले और क्षायिक समय दृष्टियों में आनत कल्प के समान भंग है। वो क्या है? वो दोनों ही उत्कृष्ट वाले भी नियम से और अनुत्कृष्ट वाले भी नियम से ये भंग था। दोनों ही जीव नियम से हो गए, उसमें एक है या अनेक है ऐसी कोई बात नहीं, वो भी होती है और वो भी हो गया। विशेषार्थ, इस अनुयोग द्वार में नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय का विचार किया है। ओग से उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग के तीन तीन भंग ही घटित होते हैं। उत्कृष्ट के तीन और अनुत्कृष्ट के तीन अलग अलग घटित किए थे। यतः उत्कृष्ट अनुभाग की सत्ता का काल और जीव बहुत कम है, क्योंकि उत्कृष्ट का अनुभाग की सत्ता का काल कितना है? अंतर्मूर्त, और जीवों की संख्या भी कम है। इसलिए कदाचित ऐसा समय आता है जब उत्कृष्ट अनुभाग की सत्ता वाला कोई जीव न हो और सब जीव अनुत्कृष्ट अनुभाग वाले हो। कदाचित अनेक जीव उत्कृष्ट अनुभाग से रहित और एक जीव सहित हो। कदाचित अनेक जीव अनुत्कृष्ट अनुभाग से सहित और एक जीव उससे रहित हो। उससे रहित यानी उत्कृष्ट का सत्ता वाला हो। कदाचित अनेक जीव उत्कृष्ट अनुभाग से सहित और अनेक जीव उससे रहित हो। इस प्रकार जो हमने पहले पढ़े थे वही बातें यहाँ बता रहे। उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग के रहने न रहने की अपेक्षा से छह भंग होते हैं, उत्कृष्ट की ओर से तीन और अनुत्कृष्ट की ओर से तीन। आदेश से भी चारों गतियों में यही छह भंग बनते हैं। केवल मनुष्य अपर्याप्त के आठ भंग होते हैं जो इस प्रकार है। वहां तो केवल आठ होते, इतना ही कहा, वो कौन कौन से है वो यहां बता रहे हैं। कदाचित सब जीव उत्कृष्ट अनुभाग से रहित होते हैं। कदाचित सब जीव उत्कृष्ट अनुभाग से सहित होते हैं। वो सब यानी कितने हैं उसकी बात नहीं, एक हो गए या अनेक हो गए, हो गए तो सभी रहित वाले और सभी सहित वाले। फिर तीसरा, कदाचित एक जीव उत्कृष्ट अनुभाग से रहित होता है और कदाचित एक जीव उत्कृष्ट अनुभाग से सहित होता है, ये चार हो गए। पांचवा, कदाचित अनेक जीव उत्कृष्ट अनुभाग से सहित और अनेक जीव उससे रहित होते हैं। अभी छठे पर, कदाचित अनेक जीव उत्कृष्ट अनुभाग से सहित और एक जीव उससे रहित होता है। सातवां, कदाचित एक जीव उत्कृष्ट अनुभाग से सहित और एक जीव उससे रहित होता है, यानी दो ही जीव हो गए उसमें। और आठवां पॉइंट, कदाचित अनेक जीव उत्कृष्ट अनुभाग से रहित और एक जीव उससे सहित होता है। ये उत्कृष्ट की ओर से आठ भंग बताए। इसी प्रकार अनुत्कृष्ट अनुभाग के भी आठ भंग होते हैं। बात तो उसी वही की वही है, परंतु अनुत्कृष्ट की ओर से बताएंगे सहित और रहित वाले। मनुष्य अपर्याप्त में ये आठ भंग होने का कारण यह है कि यह सांतर मार्गणा है। इसमें कदाचित एक भी जीव नहीं पाया जाता और कदाचित एक या अनेक जीव पाए जाते हैं। अतः उक्त आठ आठ भंग बन जाते हैं। अन्य भी वैक्रेक मिश्र आदि सांतर मार्गणाओं में, सांतर मार्गणा का अर्थ समझते हैं ना? हाँ लक्ष्मी बहन। हाँ, ये मार्गणाएं कभी नाना जीवों की अपेक्षा बात चले ना, कभी होगी भी नहीं, जैसे वैग्रेक मिश्र में अंतर पड़ेगा तो अधिक से अधिक कितना पड़ सकता है? बारह मुहूर्त का। अभी हमने ऊपर लिस्ट देखी, आहारक आहारक मिश्र में
पृथक्त वर्ष
है ना, अपगत वेदी में
छह महीने
का, अकषाई में
अपगत वेदी में सत्ता वाले जीव को तो पृथक वर्ष की हो सकता
ना, अपगत वेदी सत्ता वाले जीव है, सत्ता वाले कब तक है? दसवें गुणस्थान तक है, उसके सब अनुत्कृष्ट ही कहेंगे हम उनको। अकषाई 11वां गुणस्थान है, उसमें पृथक वर्ष कहेंगे। सूक्ष्म सांप्राय संयत लिखा है, इतना ही लिखा है, तो उसमें 6 महीने। एक शपक श्रेणी का अंतर 6 महीने का है ना। यथाख्यात संयत भी पृथक वर्ष, क्यों? यथाख्यात संयम 12वें में है, पर हमको मोहनी की सत्ता वाला चाहिए। मोहनी की बिना सत्ता वाला तो निरंतर हो गए, 13वें वाले तो हमेशा ही रहते हैं, उसकी बात यहाँ नहीं लेने, मोहनी की सत्ता वाले लेने। उपशम सम्यक दृष्टि 24 दिन रात, सासाधन सम्यक दृष्टि उत्कृष्ट अंतर पल्य का असंख्यात भाव, और सम्यक मिथ्या दृष्टि में भी उतना ही होता है। ये नाना जीवों की अपेक्षा इतना अंतर पड़ सकता है, ये सांतर मार्गणाए हैं। अब हम नीचे पढ़ रहे हैं, उपशम सम्यक दृष्टि में 24 दिन रात, सम्यक मिथ्यात्व में पल्य का असंख्यात्व भाव, हाँ देखो, अन्य भी वैकृत मिश्र आदि सांतर मार्गणाओं में इसी प्रकार 8-8 भंग होते हैं। आनंद स्वर्ग से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक तथा संयत आदि में उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग वाले जीव सदा पाए जाते हैं। कारण कि इनमें यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग वाले जन्म लेते हैं तो उनके तो नियम से अनुत्कृष्ट अनुभाग ही बना रहता है, क्योंकि घटाएंगे तो भी अनुभाग अनुत्कृष्ट ही कहलाएगा, तो अनुत्कृष्ट के साथ जो आए हैं वो अनुत्कृष्ट सदैव बना रहता है। और यदि उत्कृष्ट अनुभाग वाले जन्म लेते हैं तो उनके जब तक क्रियांतर के द्वारा, क्रियांतर कौन सी हो सकते, उत्कृष्ट है आए यानी वेदक सम्यक्त में आए, विषय योजना करते तो क्रियांतर हो गया, क्रियांतर के द्वारा उसका घात नहीं होता तब तक वही बना रहता है, तो ऐसे जीव भी नियम से अनेक पाए जाएंगे। संयत सामायिक संयत आदि के आनतादिक के समान ही जानना चाहिए तथा शेष में ओघ के समान गठित कर लेना चाहिए। इस प्रकार नाना जीवों की अपेक्षा उत्कृष्ट भंग विषयानुगम समाप्त हुआ, यानी नाना जीवों की अपेक्षा उत्कृष्ट अनुभाग वालों के जो भंग हो सकते हैं उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट उसको बताए। अभी नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य अजघन्य की बात करेंगे। अब जघन्य का प्रकरण है, निर्देश 2 प्रकार का है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओघ की अपेक्षा कदाचित सब जीव मोहनीय कर्म की जघन्य अनुभाग अविभक्ति वाले हैं।
ओघ में तो सूक्ष्म संप्राय को लेना है ना?
हाँ, देखो ओघ में जघन्य कब होता है?
सूक्ष्म
संप्राय के अंतिम समय में। बाकी सभी जो अनंत जीव है उनके क्या होगा? अजघन्य। तो इसलिए क्या कहते हैं, कदाचित।
अच्छा,
अभी जघन्य की ओर से कथन करना है। तो पहला भंग कौन सा? सभी जीव मोहनीय कर्म की जघन्य अनुभाग अविभक्ति वाले, यानी जघन्य से रहित वाले, यानी ऐसा हो सकता है सभी अजघन्य ही है, क्योंकि एक भी जीव सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम समय में नहीं है, ऐसे तो हो सकता है। दूसरा पॉइंट, कदाचित अनेक जीव मोहनीय कर्म की जघन्य अनुभाग विभक्ति से रहित है, वो विभक्ति कहो या जघन्य अनुभाग विभक्ति से रहित कहो, एक ही बात है। और एक जीव मोहनीय की जघन्य अनुभाग विभक्ति वाला है, यानी एक जीव सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम समय में है और बाकी अन्य सभी अनंत जीव अजगण्य वाले हैं, यानी जगन्य से रहित है और एक जीव जगन्य से सहित है। तीसरा भंग कैसा होगा? कदाचित अनेक जीव मोहनी कर्म की जगन्य अनुभाग विभक्ति से रहित है और अनेक जीव जगन्य अनुभाग विभक्ति वाले हैं। अनेक में दो जीव या तीन जीव या चार जीव या दस जीव सूक्ष्म सांप्रदाय के अंतिम समय में है। तो ये जगन्य की ओर से तीन भंग बताए। अब अजगन्य का नाम लेके बताएंगे। कदाचित सब जीव मोहनीय कर्म की अजगन्य अनुभाग विभक्ति वाले है, यानी सभी विभक्ति वाले अजगन्य की, वो तो होते ही है हमेशा ही। कदाचित अनेक जीव मोहनीय कर्म की अजगन्य अनुभाग विभक्ति वाले है और एक जीव अजगन्य अनुभाग विभक्ति से रहित है। अजगन्य से रहित है यानी उसके जगन्य है, यानी वो दसवें गुणस्थान के अंतिम समय में है। तीसरा, कदाचित अनेक जीव मोहनीय कर्म की अजगन्य अनुभाग विभक्ति वाले हैं और अनेक जीव, एक से ज्यादा, उसको अनेक कहा यहाँ पर, अजगन्य अनुभाग विभक्ति से रहित है। जैसे हमने उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट में तीन तीन देखे, वैसे यहाँ जगन्य अजगन्य में भी तीन तीन भंग बता रहे हैं। इसी प्रकार सामान्य नारकी, अब सामान्य नारकी में इसी प्रकार लिया है, परंतु वहां जो जगन्य है उसके योग्य जगन्य लेना। कब होता है उसके योग्य जगन्य?
असंगी
में से आया हुआ। तो यानी कभी ऐसा हो सकता है कि एक भी वो जगन्य वाला न हो, फिर उसमें वो तीन भंग घटित करना, जगन्य की और अजगन्य की ओर से तीन और तीन। तो कथन तो वैसा ही होगा, अनुभाग का प्रमाण वैसा नहीं है, परंतु कथन वैसा ही है। तो इसी प्रकार सामान्य नारकी, पहली पृथ्वी के नारकी, क्योंकि ये जो है जगन्य अजगन्य है, सामान्य नारकी में और पहली पृथ्वी के नारकी में असंगी में से आए हुए की अपेक्षा उसमें अंतर पड़ सकता है, परंतु अन्यत्र दूसरे से सातवें नरक के नारकियों के जो जगन्य और अजगन्य होता है, वो जगन्य कब होता है उनके? हाँ, जब क्रिया करता है, यानी सम्यक तो प्राप्त करता है और विसंयोजना करता है, विसंयोजना के काल में उसका कांडघात होता है, इसलिए वो कथन यहाँ घटित नहीं करना, ये पहले नरक में ही लेना। सब पंचेंद्रिय तिर्यंच सामान्य मनुष्य, सब पंचेंद्रिय तिर्यंचों में जगन्य कब है?
एकेंद्रिय
से आया हुआ, सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त में से आया हुआ सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्तक, ये सामान्य मनुष्य में कब होगा?
सूक्ष्म पर्याप्त आया
हुआ। हाँ,
नहीं नहीं नहीं,
सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम समय में। ये तीनों में लेना, सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्तक और मनुष्य नहीं, इसीलिए थोड़ा पूछती हूँ ना, थोड़ा बीच बीच में है। सामान्य देव, अभी सामान्य देव और भवनवासी अंतर कहेंगे तो असंगी में से आया हुआ लिखा ना, सामान्य देव भवनवासी और व्यंतर। सब विकलेंद्रिय, सब पंचेंद्रिय, सब विकलेंद्रिय में तो एकेंद्रिय में से आया हुआ लेना। पंचेंद्रियों में तो सूक्ष्म सांप्राय लेना है। बादर पृथ्वी पर्याप्त, अभी सभी पंचेंद्रिय लिखे है ना, तो पंचेंद्रिय अपर्याप्तकों में भी वो एकेंद्रियों में से आया हुआ जीव लेना है, उसके लिए सूक्ष्म जगन्य। बादर पृथ्वी पर्याप्त, बादर अपकाय पर्याप्त, बादर तेज काय पर्याप्त, बादर वायु काय पर्याप्त, बादर वनस्पति प्रत्येक शरीर पर्याप्त, त्रस पर्याप्त, त्रस अपर्याप्त, पांचों मनोयोगी। देखो हर एक में कारण अलग अलग है। ये अभी हमने पृथ्वी काय आदि जो देखे हैं, तो जगन्य लेके आया हुआ सूक्ष्म में से आया हुआ जीव लेना, अब त्रस पर्याप्तक, त्रस और त्रस पर्याप्तक कहेंगे तो सूक्ष्म सांप्राय, त्रस अपर्याप्तकों में एक इंद्रिय में से आया हुआ जीव लेना। पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, काय योगी, औदारिक काय योगी, ये सब सूक्ष्म सांप्राय वाले लेना। पुरुष वेदी, स्त्री वेदी, नपुसक वेदी, ये तीनों वेद वालों में भी
सूक्ष्म सांप्राय
नहीं, अपना अपना वेद का अंतिम समय। हाँ, क्रोधी, मानी, मायावी, लोभी, इनमें अपना अपना कषाय का अंतिम समय लेना। आप ही निर्बोधिक ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, देखो इसको पढ़ते, फिर हमने भी क्रोधी, मानी, माया, विलोभी देखा था ना। अब ये सम्यक दृष्टि संबंधी जो है, अभिनिबोधि, क्षुतज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनपरिज्ञानी, सभी संयत है, तो यहाँ तो सूक्ष्म सांप्राय लेना। सामयिक छेदों पर स्थापना संयत वालों के
सूक्ष्म नहीं, नवे गुण स्थान के अंत में।
हाँ, नवे गुण स्थान के अंत में, चक्षु दर्शन वाले, अचक्षु दर्शन वाले, ये दसवा गुण स्थान, अवधि दर्शन वाले भी उसमें, शुक्ल लेशा वाले भी, भव्य सम्यक दृष्टि, क्षायिक सम्यक दृष्टि, वेदक सम्यक दृष्टि। वेदक सम्यक दृष्टि में जघन ने किसको दिया था, याद है? दो बार उपशम श्रेणी चढ़ के आया है और कृतकृत्य वेदक हो गया है, तो उसके जघन्य होगा वो। तो एक जीव की अपेक्षा क्या, जघन्य तो नाना जीवन की अपेक्षा, परंतु घटित क्या करना है, कभी कभी वो जघन्य नहीं होंगे, ऐसा करना। और आहारी जीवों में जानना चाहिए, आहारकों में भी सूक्ष्म सांप्राय होता है। ये 55 पेज पर अभी हम पहला पैराग्राफ तो हमने जघन्य का देख लिया, जघन्य तो तब तक है ना, तभी तक सत्ता है, हमको जघन्य से घटित करना है। वो उनके 12वें गुणस्थान तक चक्षु, चक्षु, अवधि, दर्शन, वो सब होता है, परंतु मोनी की सत्ता वाला जघन्य में जघन्य अनुभाग कब है, तो 10वें के अंत में। आहारक में भी ऐसा ही समझना, संगी में भी ऐसा ही लेना। जघन जिसमें जिसमें 10वां गुणस्थान है क्षपक वाला, उन सभी मार्गणाओं में वही प्रकटित करना, और बाकी जो मार्गणा है उनमें अपना अपना जघन्य जैसा होता है वैसा घटित करना। ये जो हमने सभी मार्गणाएं देखी, तो उसमें जघन्य कभी होगा भी या नहीं भी होगा। देखो इसमें बादर, पर्याप्त वगैरह सभी लिए, सूक्ष्म अपर्याप्त को नहीं लिया था यहाँ पर। अब नीचे का पैराग्राफ, दूसरी पृथ्वी से लेकर सातवीं पृथ्वी तक, जब हमने सामान्य नारकी देखे थे तो ऐसा देखा कि जघन्य कभी न भी हो, क्यों? क्योंकि असंगी में से आते हैं। अब दूसरी पृथ्वी से लेकर सातवीं पृथ्वी तक जघन्य अनुभाग विभक्ति वाले और अजघन्य अनुभाग विभक्ति वाले नियम से होते हैं, क्योंकि वहां जघन्य करने वाले तो सम्यकता और विसंयोजना करने वाले जीव हैं, वो हमेशा ही पाए जाएंगे। हमने देखा ना, असंख्यात जीव होगी वैसे वहां पर। इसी प्रकार तिर्यंच ज्योतिषी देवों से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देव, भवनवासी व्यंतर को छोड़ा, क्योंकि उनमें जघन्य तो असंगी में से आया हुआ और उसके भंग हमने देख लिए, कभी होते भी है नहीं भी होते हैं जघन्य वाले। तो कहते इसी प्रकार तिर्यंच, तिर्यंचों में क्या होगा, जघन्य अनुभाग विभक्ति वाले नियम से होंगे। कौन से होंगे? सूक्ष्म एकेंद्रीय वाले जिन्होंने जघन्य किया है, वो वहां से मरकर अन्य किसी भी पर्याय में उत्पन्न हो, तिर्यंचों के तो वो तीर्य सभी तीर्यंचों में जघन्य पाया जाएगा, और वो जीव नियम से है क्योंकि वो करने वाले तो अनंत जीव है, इसलिए वो नियम से है। कहा ज्योतिषी देवन से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देव, ज्योतिषी में जघन्य किसके होगा? वहां पे जाके जो अनंत अनुबंधी की विसर्जना करता है, हाँ। और बाकी सौधर्म से सर्वार सिद्धि तक के देव दो बार उपशम श्रेणी चढ़ के आया है, क्षपणा की है और वहां उत्पन्न हुआ है, उसके जघन्य होगा। तो वहां यही बात कहना चाहते हैं कि ऐसे जीव नियम से होंगे। बात क्या चल रही है? जघन्य वाले भी नियम से होंगे और अजघन्य वाले भी नियम से होंगे। इतनी बात, इतना कथन कॉमन है, सामान्य है दोनों के लिए। एकेंद्रिय बादर एकेंद्रिय, बादर एकेंद्रिय अपर्याप्त, सूक्ष्म एकेंद्रिय, सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्त, यानी उनमें जो जघन्य करने वाले भी और वो जघन्य के साथ इसमें उत्पन्न होने वाले भी जीव हमेशा ही पाए जाएंगे। उन जीवों की संख्या अनंत है तो इसमें तो हमेशा ही पाए जाएंगे। पृथ्वी का एक बादर, पृथ्वी का एक, अभी ये जीव है तो असंख्यात, फिर भी उसमें वो जघन्य के साथ उत्पन्न होने वाले हमेशा पाए जाएंगे। बादर पृथ्वी का एक अपर्याप्त, सूक्ष्म पृथ्वी का एक और उसके पर्याप्त अपर्याप्त, अपकायिक बादर, अपकायिक बादर, अपकायिक बादर के बाद कॉमन ही चाहिए। हाँ, देखो सूक्ष्म पृथ्वी का एक अपकायिक लिया, फिर बादर अपकायिक लिया,
बादर अपर्याप्त अपकायिक,
नहीं 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 नहीं, बादर के बाद अपकायिक का भी कॉमा निकाल देना, दो कॉमा की बात करें आप। हाँ, तो ऐसा होगा, पहले पेज पर हमने क्या देखा? अपकायिक देखा, उसके बाद बादर अपकायिक, और बाद में ये जो तीन शब्द है ना, बादर अपकायिक अपर्याप्त, फिर कॉमा लगाना। सूक्ष्म अपकायिक, सूक्ष्म अपकायिक पर्याप्तक, सूक्ष्म अपकायिक अपर्याप्तक, तेज कायिक बादर, तेजस कायिक बादर, तेजस कायिक अपर्याप्त, बादर तेजस कायिक अपर्याप्त, पर्याप्त नहीं लिया, बादरों में अपर्याप्त लिया, बादरों में पर्याप्त नहीं लिए। सूक्ष्म तेजस कायिक, सूक्ष्म तेजस कायिक पर्याप्त और सूक्ष्म तेजस कायिक अपर्याप्त, वायु कायिक बादर, वायु कायिक बादर, वायु कायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म वायु कायिक, सूक्ष्म वायु कायिक पर्याप्त, सूक्ष्म वायु कायिक अपर्याप्त, सब वनस्पति, सब निगोदिया, औदारिक मिश्र का योगी, वैक्रिक का योगी, कार्मण का योगी, मति अज्ञानी, श्रुत अज्ञानी, विभंग ज्ञानी, परिहार विशुद्धि संयत, संयता संयत, असंयत, कृष्ण लेशा वाले, नील लेशा वाले, कपोत लेशा वाले, पीत लेशा वाले, पद्म लेशा वाले, अभव्य मिथ्या दृष्टि, असंग और अनाहारी जीवों में जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए?
जघन्य भी और अजघन्य
भी, कि जघन्य भी और अजघन्य भी नियम से होते हैं, ये कथन सभी में पाया जाएगा। जहाँ जीवों की संख्या ज्यादा है ना, इसीलिए
परिहार विशुद्धि भी लिया है यहाँ पे।
परिहार विशुद्धि है ना यहाँ पर, विभंग ज्ञानी के बाद लिया परिहार विशुद्धि वाले, यानी परिहार विशुद्धि वाले भी हमेशा होते हैं और उसमें जघन्य वाले भी हो गए और अजघन्य वाले भी। जघन्य कौन हो गए? दो बार उपशम श्रेणी चढ़ के क्षपणा पहले की और फिर बाद में परिहार विशुद्धि किया है, उसके जघन्य होगा, और जिसने उसने जघन नहीं किया है उसका अजघन्य होगा। मनुष्य अपर्याप्त को में मौनीय कर्म की जघन्य और अजघन्य विभक्ति के आठ आठ भंग होते हैं। इसी प्रकार वैकृत मिश्र का योगी, आहारक का योगी, आहारक मिश्र का योगी, ये सभी सांतर मार्गणायली, जैसे हमने उत्कृष्ट के बारे में देखा था वैसे यहां भी लेना। अपगत वेदी, अकषायी, सूक्ष्म सांप्राय संयत, यथाख्यात संयत, उपशम सम्यक दृष्टि, सासादन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि में जानना चाहिए। विशेषार्थ, उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति की अपेक्षा ओघ और आदेश से जिस प्रकार स्पष्टीकरण किया है उसी प्रकार यहां भी कर लेना चाहिए। मात्र जिन मार्गणाओं में विशेषता है उनमें जघन्य स्वामित्व को ध्यान में रखकर वह घटित कर लेनी चाहिए। कथन भले वैसा ही होगा परंतु जघन्य किस अपेक्षा से है वो ख्याल में लेते हैं तो ये बात क्लियर हो जाएगी। देखो, इस प्रकार नाना जीवों की अपेक्षा भंग विषयानुगम समाप्त हुआ। पहले उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट के भंग देखे, फिर जघन्य अजघन्य के देखे, अब नाना जीवों की अपेक्षा भागा भागानुगम देखेंगे। अभी हमने कितना नंबर 15 नाक डाला था ना, अब 16 ने, जो तीन पेज से हमने शुरू किए थे ना नंबरिंग। भागा भागानुगम, भागा भागानुगम पहले सभी जीवों की अपेक्षा कितने भाग है वो कहेंगे, सभी जीव कितने हैं और उत्कृष्ट वाले उसके कितने भाग प्रमाण हैं, हम कहेंगे अनंत विभाग प्रमाण, और अनुत्कृष्ट कितना है,
अनंत बहुभाग,
अनंत बहुभाग जब होगे तभी उत्कृष्ट होगे तभी अनंत भाग होगे। तो यहाँ कहते भागा भागानुगम दो प्रकार का है। देखो एक बात होती है अल्प बहुत्व, कम से कम नंबर से शुरू करेंगे और उत्कृष्ट की ओर बताएंगे, भागा भागे ने कितने भाग प्रमाण है वो बताएंगे, सब जीवों के कितने भाग प्रमाण, बाद में जब परिमाण अनुयोग होगा तो अनंत वे भाग प्रमाण है परंतु है कितने फिर कहेंगे, जो कहीं असंख्यात है या संख्यात है जो बात है। तो यहाँ जघन्य और उत्कृष्ट दोनों की बात बताएंगे, उनमें से उत्कृष्ट का प्रकरण है, उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। ओघ की अपेक्षा मौनीय कर्म की उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले जीव सब जीवों के कितने भाग हैं? तो कहते अनंत वे भाग है, क्योंकि हमने देखा था ना कभी नहीं भी होगे और होगे तो एक भी होगा, अनेक भी होगे, अनेक होगे तो भी टोटल जीवों के अनंत वे भाग ही होगे। अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले जीव सब जीवों के कितने भाग है, अनंत बहुभाग प्रमाण है, अर्थात सब जीवों में अनंत का भाग देने पर एक भाग प्रमाण उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले हैं और शेष बहुभाग प्रमाण, बहुभाग एक शब्द चाहिए, अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले हैं। मंजू बेन कुछ ख्याल में आ रहा है क्या? नहीं, हाँ। इसी प्रकार ये जो अनंतवा और अनंत बहुभाग ये कहाँ कहाँ घटित होगा, जहाँ जहाँ जीवों की संख्या अनंत है वहीं पर हो। आप कहेंगे सब जीव तो हमेशा ही अनंत हो गए, परंतु मोहनी की सत्ता वाले सब जीव लेना एक तो, और सभी मार्गणाओं में तो अनंत नहीं हो गए। जब देवों की बात करेंगे तो देवों में तो अनंत जीव नहीं है, तो वहां प्रमाण संख्या तो जो कुछ है वो बाद में कहेंगे। अभी हम जहां सत्ता वाले जीव अनंत है उसमें ये बात लागू होगी, इसलिए जैसा ओघ का कथन है अनंत वा भाग और अनंत बहुभाग, ऐसा ही कथन कहां कहां होगा, तो कहते हैं सामान्य तिर्यंच, सब एकेंद्रीय, सब वनस्पति कायिक, ये वायु कायिक आदि को नहीं लिया, वे अपने अपने असंख्यात होते हैं, सब निगोदिया, निगोदिया नहीं साधारण वनस्पति का एक, सामान्य काय योगी, औदारिक काय योगी, औदारिक मिश्र काय योगी, जिनमें जिनमें यह अनंत संख्या घटित होती है, अनंत तो निगोद में ही होती है, तो जहां वो अनंत वाले होते हैं वो सब मार्गणा यहाँ लिए। कार्मण काय योगी, नपुसक वेदी, क्रोधी मानी मायावी लोभी, मति अज्ञानी श्रुत अज्ञानी, असंयत, अचक्षु दर्शन वाले। चक्षु दर्शन वालों को क्यों छोड़ा?
वो असंख्यात
ही होते हैं। अचक्षु दर्शन वाले तो सभी है, तो एक इंद्रिय भी आ गए तो उसमें अनंत होते हैं। कृष्ण लेशा वाले, नील लेशा वाले, कापोत लेशा वाले, शुभ लेशाओं को नहीं लिया। भव्य अभव्य, मिथ्या दृष्टि, असंगी, आहारी और अनाहारी जीवों में जानना चाहिए, ये सब अनंत घटित होते हैं। विशेषण, ओग से उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले असंख्यात, ये उनकी प्रमाण बता रहे हैं। और अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले अनंत होते हैं, इसी से यानी इसी कारण उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले अनंत विभाग और अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले अनंत बहुभाग कहे हैं। यहाँ मूल में अन्य जितनी मार्गणाएं गिनाई है उनमें यह व्यवस्था बन जाने से कौन सी, वो अनंत बहुभाग वाला और अनंतवा भाग बन जाता है, उनकी प्ररूपना ओग के समान जानने की सूचना की है। अनंतवा भाग देखा था, अनंतवा भाग, तो अनंतवा भाग की वैल्यू कितनी है? असंख्यात है। यानी उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले, कभी हमने देखा ना, एक भी नहीं होगा, होगा तो एक भी होगा, होगा तो अनेक भी हो गए, तो अनेक में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? तो असंख्यात हो सकते हैं। जो ये असंख्यात है प्रमाण, वो टोटल अनंतों के कितने भाग है? तो अनंत विभाग है। ऐसा ही नहीं लगाना, क्योंकि कौन से अनंत से भाग देते हैं? अभी जीव संख्या, जीवों की संख्या है अनंत, उसको जीवों की संख्या वाले अनंत से भाग देंगे तो संख्या एक आ जाती है। इट डिपेंड्स कि कौन से अनंत से भाग दे रहे हैं और कौन से अनंत को भाग दे रहे हैं, ये दोनों ही है ना। अभी हम आदेश की अपेक्षा पढ़ेंगे ना आगे के, कुछ इसमें समझना है बड़े आदेश की अपेक्षा नारकियों में मुनि कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले जीव सब जीवों के कितने भाग है? अब कहेंगे असंख्यात वे भाग है, फिर भी उनकी संख्या असंख्यात कहेंगे वो। हाँ, अभी यहां प्रमाण की बात नहीं आई है। अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले जीव सब जीवों के कितने भाग है? जब यहां सब जीव कह रहे हैं तो सब नारकी समझना, असंख्यात बहुभाग प्रमाण है। प्रतिभा तो यहां असंख्यात क्यों कहा, पहले अनंत क्यों कहा था? टोटल जीव कितने हैं? असंख्यात है, क्योंकि नारकी असंख्यात होते हैं, तो उसका आनंद असंख्यात भाग होगा, उसका आनंद भाग तो नहीं हो सकता। हाँ, इसलिए यहाँ जो कथन है वो असंख्यात भाग और असंख्यात बहुभाग, ऐसा कथन यहाँ आएगा। हाँ, जिसमें निगोद है वो सारे अनंत में चले गए, इसलिए वहां पृथ्वी कायिक को नहीं लिया। काय मार्गणा की अपेक्षा पृथ्वी कायिक को नहीं लिया, अग्नि कायिक को नहीं लिया, ऊपर अनंत बहुभाग अनंतवा भाग में पृथ्वी कायिक अग्नि कायिक ये जो काय मार्गणा की अपेक्षा ये त्रस कायिक किसी को नहीं लिया है। अब यहाँ तो नारगी की अपेक्षा असंख्यात बहुभाग और असंख्यात वा भाग कह रहे। यदि मनुष्य पर्याप्तों की बात पूछेंगे तो क्या कहेंगे हम?
संख्यात,
संख्यात की बात आएगी वहां पर। अभी हम असंख्यात को पहले देख लेते हैं। हाँ, अनंत में वनस्पति काई के लिए, क्यों? निगोद वनस्पति काईक का भेद है, इसलिए उसमें अनंत घटित होता है। वायु काईक में, अग्नि काईक में, जल काईक में, वो पृथ्वी में नहीं होता, वहां तो असंख्यात ही जीव होते हैं। सभी त्रसों को मिला देंगे तो भी असंख्यात ही होते हैं। द्विंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के सभी जीव मिलकर भी असंख्यात है, और उनको अलग अलग भेद करेंगे तो भी अपने अपने असंख्यात है। एकमात्र निगोद जिसमें गर्भित है, ऐसी मार्गणाएं है, वो अनंत है। देखो, ये असंख्यात वा भाग और असंख्यात बहुभाग, इसी प्रकार सब नारकी, सब पंचेंद्रिय तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच लिए ना, मनुष्य मनुष्य अपर्याप्त, मनुष्य जब कहेंगे तो सामान्य मनुष्यों में अपर्याप्त मनुष्य भी आ गए, इसलिए वहां भी असंख्यात घटित होता है। और अकेले मनुष्य अपर्याप्त लेंगे तो भी असंख्यात तो होते ही है, तो वहां भी असंख्यात वा भाग और असंख्यात बहुभाग ये कथन वहां भी घटित होगा। मनुष्य पर्याप्तों को नहीं लिया है, क्यों? वो होते ही संख्यात है। सामान्य देव भवनवासी से लेकर अपराजित अनुत्तर तक के देव, क्योंकि सामान्य देव और भवनवासी से लेकर अनुत्तर तक के देव लिया, किसको छोड़ा, क्यों छोड़ा?
संख्यात।
हाँ, वो सर्वार सिद्धि वाले संख्यात ही होते हैं, तो उसमें वो असंख्यात बहुभाग या असंख्यातवा भाग ये कथन घटित नहीं होगा। उसमें भी अपना अपना जो उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट है उसको लेना, ये हो गए सभी देवों को लिए ना हमने ना। सब विकलेंद्रिय, क्योंकि वे भी असंख्यात होते हैं। सब पंचेंद्रिय, सब पृथ्वी कायिक, सब जल कायिक, सब तेजस कायिक, सब वायु कायिक। और वनस्पति में बादर वनस्पति कायिक प्रत्येक शरीर तथा उनके पर्याप्त और अपर्याप्त अलग अलग करेंगे तो भी उनका प्रमाण असंख्यात होता है, अनंत नहीं होता। जब वनस्पति कायिक अनंत होते हैं कहेंगे तो सामान्य से सबको मिलाकर जिसमें निगोद भी गर्भित है तब अनंत हो गए, अन्यथा वो सभी असंख्यात, अपना अपना भेद असंख्यात का है। सब त्रस कायिक, पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, वैकृत कायोगी, वैकृत मिश्र कायोगी, स्त्रीवेदी पुरुषवेदी विभंग ज्ञानी, आभिनिबोधिक ज्ञानी, क्षुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, संयता संयत, चक्षु दर्शन वाले, संयता संयत को लिया, संयतों को नहीं लिया, वो संख्यात है। संयतों के भेद भी संख्यात हो गए। संयता संयत कितने हो गए?
असंख्यात।
हाँ, तिर्यंचों की मेजोरिटी है ना उसमें, तो मनुष्य तो संख्यात हो गए। चक्षु दर्शन वाले, अचक्षु वालों को आनंद में लिया था, चक्षु दर्शन वाले संख्या असंख्यात में लिया। अवधि दर्शन वाले, तेजो लेशा वाले, पद्म लेशा वाले, शुक्ल लेशा वाले, सम्यक दृष्टि, वेदक सम्यक दृष्टि, क्षायिक सम्यक दृष्टि, उपशम सम्यक दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और संगी जीवों में जानना चाहिए। उसमें कितनी मार्गणाएं सांतर होने पर भी जब वो है तो वो असंख्यात वा भाग और असंख्यात बहुभाग घटित होगा। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियों में, अब ये तो संख्यात ही जीव है, उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले जीव सब जीवों के कितने भाग है? संख्यात वे भाग है। और अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले जीव सब जीवों के संख्यात बहुभाग प्रमाण है। इसी प्रकार सर्वार सिद्धि के देव आहार का योगी, कॉमा लगाना यहाँ पर, आहारक मिश्रक आयोगी, ये सब संख्यात वाले मार्गणायली अपगत वेदी कषाय रहित यानी ग्यारहवीं गुणस्थान वाले मन परे ज्ञानी संयत सामायिक संयत छेदोपस्थापना संयत परिहार विशुद्धि संयत सूक्ष्म सांप्राय संयत और यथाख्यात संयतों में जानना चाहिए। नारकी आदि मार्गणाओं में उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले यद्यपि असंख्यात है फिर भी क्या कहते हैं, दोनों की संख्या कितनी है, असंख्यात। उत्कृष्ट वाले भी असंख्यात और अनुत्कृष्ट वाले भी असंख्यात, फिर भी अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वालों से उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले असंख्यात्वे तो रह गया, असंख्यात्वे भाग ही है। देखो उत्कृष्ट वाले भी असंख्यात है, अनुत्कृष्ट वाले भी असंख्यात है, पर अनुत्कृष्ट वाला जो असंख्यात है वो उत्कृष्ट वाला असंख्यात का असंख्यात गुणा है, तभी उसको असंख्यात बहुभाग कहा और इसको असंख्यात्वा भाग कहा। इसी से इनमें उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले असंख्यात विभाग प्रमाण और अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले असंख्यात बहुभाग प्रमाण कहे हैं। मनुष्य पर्याप्त आदि में दोनों विभक्ति वाले संख्यात है, इसलिए इनमें उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले संख्यात वे भाग प्रमाण और अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले संख्यात बहुभाग प्रमाण कहे हैं। ये तो उत्कृष्ट की बात हो गई। अब जघन्य का प्रकरण है। निर्देश दो प्रकार का है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। ओघ की अपेक्षा यानी ओघ में सभी जीव लेना, तो सभी जीवों में जघन्य किसके होता है, अभी देखा हमने, सूक्ष्म सांप्राय वाले के, तो वो कितने भाग प्रमाण हो गए। ओघ की अपेक्षा अनंत विभाग, मनुष्यों की अपेक्षा पूछेंगे तो संख्यात विभाग कहेंगे, है ना, वो भी मनुष्य पर्याप्त उनकी अपेक्षा। तो ओघ की अपेक्षा मोहनीय कर्म के जघन्य अनुभाग विभक्ति वाले जीव सब जीवों के कितने भाग है, अनंत वे भाग है, और अजघन्य अनुभाग विभक्ति वाले सब जीवों के कितने भाग है, अनंत बहुभाग है। ये बाद में आया है, पहले करना। बहुभाग ब रह गया और नीचे जो ब है वो निकाल दो। इसी प्रकार ये जो अनंतवा भाग और अनंतवा अनंत बहुभाग है, यही कथन और कहां घटित होगा, तो ऐसे ही मार्गणाएं लेनी है जिसमें दसवा गुणस्थान भी है और अनंत जीव भी है। एक तो ओग में बता दिया, अब कहां होता है काय योगी, क्योंकि काय योगी कहेंगे तो अनंत वाले बात तो घटित होती है, निगोद उसमें काय योगी में आए और दसवें वाले को भी काय योग होता है। औदारिक काय योगी कॉमा लगाना, नपुसक वेदी क्रोधी मानी मायावी लोभी। अभी नपुसक वेदी क्रोधी मानी मायावी में दसवा गुणस्थान भी है और ये निगोद भी है, दोनों घटित हो गए ना, अनंत वा भाग अनंत वो भाग। और चक्षु दर्शन वाले लिए जैसे पहले भी लिए थे, भव्य अभव्य नहीं लेना क्योंकि उसमें एकमात्र मिथ्या तो गुणस्थान ही है, उसमें वो घटित नहीं होगा। और आहार को में जानना चाहिए, नहीं उसमें दसवां गुणस्थान नहीं लेना, परंतु नपुसक वेद का अंतिम समय में जघन्य है, वो जीव कितने हैं, सब जीवों की अपेक्षा अनंत विभाग है, यही घटित करना है। दसवां गुणस्थान जो मैंने बताया तो सामान्य से बताया था कि जिसमें दोनों ही घटित होना चाहिए। नपुसक वेदियों में जघन्य किसका होगा, नपुसक वेद सहित श्रेणी चढ़ने वाले क्षपक श्रेणी में नपुसक वेद के उदय का अंतिम समय, उसके मोनी की जघन्य अनुभाग वाली सत्ता है और बाकी सारे जो है वो अजघन्य वाले हैं। कौन? सारा एक
केंद्रीय वेद वाले जीव अनंत
है। हाँ, नपुसक वेद वाले जीव अनंत है, क्योंकि एक केंद्रीय सारे नपुसक वेद ही ना, ये तो चतुर इंद्रिय तक सभी है। विशेषार्थ ओग से और उक्त मार्गणाओं में जघन्य अनुभाग विभक्ति वाले संख्यात है। देखो, पहले हमने क्या देखा था, उत्कृष्ट में वो असंख्यात थे, फिर भी सभी जीवों की अपेक्षा अनंत वा भाग था। अब ये कैसे है, संख्यात तो भी अनंत वा भाग होगा ही होगा ना, और अजगण्य अनुभाग विभक्ति वाले अनंत हैं, अतः उक्त प्रकार से भागा भाग बन जाता है। ये बात ख्याल में आई, जघन्य अनुभाग वाले कितने हैं तो संख्यात है, क्योंकि वो क्षपक श्रेणी में होते हैं और बाकी सारे अजगण्य वाले तो अनंत हैं। उत्कृष्ट में देखा था तो उत्कृष्ट वाले असंख्यात थे, फिर भी सभी जीवों की अपेक्षा अनंत वा भाग। आगे भी इसी प्रकार संख्या जानकर भागा भाग घटित कर लेना चाहिए। आदेश की अपेक्षा नारकियों में मोनीय कर्म के जघन्य अनुभाग विभक्ति वाले जीव सब जीवों के कितने भाग हैं, असंख्यात वे भाग हैं, और अजघन्य अनुभाग विभक्ति वाले सब जीवों के असंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं। अब इन नारकियों में जब हमने जघन्य कहा तो असंगी में से आया हुआ, इसी प्रकार सब नारकी, अब सभी नारकियों को लिया, क्योंकि वहां जो जघन्य होता है ना, विषय योजना वाले वगैरह, उनकी अपेक्षा अन्य जो अजघन्य है उनकी संख्या ज्यादा है, तो वहां असंख्यातवा भाग और असंख्यात बहुभाग कहेंगे। इसी प्रकार सब नारकी, सब तिरियंश मनुष्य, मनुष्य अपर्याप्त सामान्य देव, देखो सब तिरियंचों में लिया तो क्या सब तिरियंचों में अनंत घटित नहीं होता है?
ये जघन्य अनुभाग,
हाँ जघन्य तिरियंचों में जघन्य किसके होगा? हाँ, सूक्ष्म एकेंद्रीय लब्धि पर्याप्त,
तो असंख्यात
नहीं, वो जीव भी अनंत होगी ना, इसलिए असंख्यातवा भाग का क्या कहा, देखो अनंत का असंख्यातवा भाग, पहले असंख्यात थे उत्कृष्ट वाले, वहां तो थे असंख्यात और वो अनंत का अनंतवा भाग था, अब इनकी संख्या है अनंत और वो बड़े वाले अनंत का सभी तिरियंश होंगे, असंख्यात वा भाग होगा। तो ये सब तिरियंश मनुष्य, मनुष्य अपर्याप्त सामान्य देव, भवनवासी से लेकर अपराजित विमान तक के देव, अभी हमने उत्कृष्ट में घटित किया था ना, जघन्य में भी होगा वैसे, सब एकेंद्रिय, सब विकलेंद्रिय, सब पंचेंद्रिय, पृथ्वी सब पृथ्वी का एक, सब अपकायिक, सब तेजस का एक, सब वायु का एक, सब वनस्पति का एक, सब त्रस का एक, पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, औदारिक मिश्र का योगी, वैक्रिक का योगी, वैक्रिक मिश्र का योगी, कार्मण का योगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, मति अज्ञानी, क्षुत अज्ञानी, विभंग ज्ञानी, मति अज्ञानी है तो अनंत, परंतु उनमें जो निगोद है, सूक्ष्म निगोद, उनकी संख्या अनंत होने से असंख्यातवा भाग घटित होता है। ख्याल में आया ना, क्या कंफ्यूजन है? हाँ, देखो देखो, एक है अनंत संख्या, मूल मेन चीज कितनी है, पूरे जीवों की संख्या, सभी जीव अभी तीरंजों को छोड़ो अनंत है, अब उन अनंतों में जघन्य करने वाले कौन है?
जो वहाँ से निकले वो भी हो सकते
नहीं, सभी जीवों में अगर लेना है तो सूक्ष्म सांप्राय वाले हैं। उनकी संख्या कितनी है? संख्यात है। सब जीवों के कितने भाग है? अनंत वे भाग है। एक बात ये हो गई, जीवों की संख्या कितनी? 10 है समझते हैं, तो सभी अनंत का कितवा भाग हुआ? अनंतवा भाग हुआ। अभी हम देखते हैं कि ये जगन्य करने वाले असंख्यात है, नारकियों में असंख्यात जीव वो विसंजना वगैरह करते हैं। तो अभी नारकियों की अपेक्षा पूछेंगे, तो सभी नारकियों की अपेक्षा उसको असंख्यातवा भाग कहेंगे। अब यहाँ जो अन्य मार्गणाएं लिए ना, नपुसक वेदी लिया या कोई भी क्रोधी वगैरह, उसमें अभी हम एक इंद्रियों की बात करेंगे। सभी तिर्यंच लेना है तो तिर्यंचों में तो सूक्ष्म सांप्राय नहीं है,
वहाँ पे वो सूक्ष्म
है, तो उसमें जघन्य किसके होगा? सूक्ष्म एक इंद्रिय लब्धि पर्याप्त तक। वो करने वाले जीव कितने हैं? अनंत है, तो सब पूरा अनंत है, उसका कितवा भाग है? असंख्यातवा भाग। अनंत होते हुए भी उसका असंख्यातवा भाग अनंत ही है। ये मति अज्ञानी, श्रुत अज्ञानी, विभंग ज्ञानी, अभिनिबोधि ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, ये समय दृष्टि है, फिर भी है असंख्यात और उसका असंख्यातवा भाग है, उतने जगन्य करेंगे, क्योंकि वो जगन्य करने वाले 10वें गुणस्थान वाले है, हो गए 10-5, 108 भी हो सकते हैं, परंतु वो जो है असंख्यातवा भाग हो गए। संयतों में जघन्य करने वाले वो फिर लेना, सूक्ष्म निगोद वाले, और वो जघन्य के साथ कहीं भी असंयतों में उत्पन्न होंगे। चक्षु दर्शन वाले, अवधि दर्शन वाले, छहोलेशा वाले, यहाँ शुक्ल लेशा वाले को भी लिया। शुक्ल लेशा वाले टोटल जीव है असंख्यात, और उसमें 10वां गुणस्थान प्राप्त करने वाले हो गए संख्यात, फिर भी वो असंख्यातवा भाग होगा। अभव्य, अभव्य है तो अनंत, उसमें जगन्य है एक इंद्रियों के, तो वो अनंत का असंख्यातवा भाग वाला अनंत होगा। ख्याल है ना? छहो समय दृष्टि, छहो समय दृष्टि नहीं, तीन तो समय दृष्टि, मिथ्यात्व, सासादान और मिश्र वाले, संगी असंगी। हाँ, असंगियों में भी ऐसे समझना, ये सारे एक इंद्रियादि सारे असंगी है अनंत, उसमें से अनंत है वो जघन्य करने वाले, फिर भी वो है असंख्यातवा भाग। असंयत ने 1 से 4 गुणस्थान, तो असंयतों में भी जीव अनंत है, और वो जघन्य करने वाले तो अनंत है, फिर भी वो असंख्यातवा भाग वाले अनंत है। और अनाहारक जीवों में जानना चाहिए, मनुष्य पर्याप्त आदि संख्यात राशियों में जघन्य अनुभाग विभक्ति वाले सब जीवों के कितने भाग हैं? संख्यात वे भाग है, और अजघन्य वाले संख्यात बहुभाग है। इस प्रकार जघन्य भागा भागानुगम समाप्त हुआ। यही रुकते हैं प्रेरणा में। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नो सदा देत होरो। प्रेरणा में।